हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। वहीं उन दोनों के पीछे पीछे सिद्धार्थ खुराना अपने हाथों की मुट्ठी को कसकर बंद किए हुए गुस्से से आग बबूला होकर उस ओर ही आ रहा था। इस वक्त सिद्धार्थ खुराना के गुस्से की कोई सीमा नहीं थी, क्योंकि तुम्हारा मेंशन के बाहर आते ही रणविजय रोनित के साथ वहां पहुंच गया था। गाड़ी में रखी फर्स्ट एड बॉक्स से उसने अपनी ड्रेसिंग कर ली थी और रोनित के साथ हॉस्पिटल जाने से मना कर दिया, और सीधा झलक सिद्धार्थ के पहुंचने से पहले वो खुराना मेंशन पहुंच गया। और जैसे ही सिद्धार्थ की गाड़ी मेंशन में आई, रणविजय ने तुरंत झलक की साइड का दरवाज़ा खोला और उसे गोद में उठा लिया। और ये सब इतना जल्दी हुआ कि सिद्धार्थ को कुछ भी सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला था। सिद्धार्थ का इस वक्त गुस्से के मारे बुरा हाल था। उसने अपने हाथों की मुट्ठियों को कसकर बंद किया हुआ था और आग उगलती नज़रों से उन्हें देखता हुआ अंदर आ रहा था। फिलहाल जल्दी रणविजय ने झलक को हॉल में रखे सोफे पर बैठा दिया था। आकांक्षा पूरी तरह से ये दृश्य देखकर अंदर ही अंदर खींच चुकी थी और दम्भ फटाफट से अपनी एक्टिंग को बरकरार रखते हुए झलक के पास आई और बोली, क्या हुआ तुम्हें? ये क्या हो गया तुम्हें? और आपको कहाँ मिली? क्या हुआ इसके साथ? इसके फटे कपड़े देखकर तो ऐसा लगा जैसे कि ये अपनी इज्जत खो बैठी हो। अब जैसे ही आकांक्षा ने इस तरह की बातें फिक्रमंद होकर की, झलक गुस्से से उसकी ओर देखने लगी थी। इस वक्त वाकई उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। एक तो कई जगह से उसके कपड़े भी फटे हुए थे। तो ये दृश्य देखकर आकांक्षा को लगा शायद उसका प्लान पूरी तरह से सक्सेस हो चुका है और इसीलिए वो ऐसी हालत में वहां आई है। लेकिन तुरंत रणविजय आकांक्षा को घूरते हुए बोला, मुझे लगता है कि आपको र्यूमर्स फैलाने की कुछ ज्यादा ही जल्दी रहती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कुछ गुंडों ने झलक को अगवा करने की कोशिश की थी, लेकिन वक्त रहते मैंने उन्हें यमदूत के दर्शन करवा दिया है और मिस झलक को थोड़ा हाथापाई में चोटें आई हैं। वो बिल्कुल ठीक हैं, आपको उनके लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जैसे रणविजय ने पूरी तरह से कड़क शब्दों में आकांक्षा को बातें सुनाई, आकांक्षा का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा था। उसने सपने में सोचा था कि रणविजय इस तरह से उसकी बेइज्जती कर देगा, वो भी सिद्धार्थ के सामने। वहीं सिद्धार्थ तो केवल लाल आंखों से झलक को घूरे जा रहा था। झलक जिस तरह से रणविजय के साथ फ्री हो गई थी, ढेर सारी बातें कर रही थी और इतना ही नहीं, उसकी गोद में सवार होकर वहां आई थी। उसकी आंखों के सामने तो ये सब नहीं जा रहा था, तो इसीलिए उसके गुस्से की अब कोई सीमा नहीं थी। वो तो बस बार बार उसे आग उगलती नजरों से देखे जा रहा था। वहीं अब दादी तुरंत फिक्रमंद होते हुए, मेरी बच्ची है, सब कुछ हुआ कैसे? हुआ क्या था और कौन थे वो लोग? सिद्धार्थ, क्या तुमने उन्हें पुलिस के हवाले नहीं किया? तभी सिद्धार्थ कोल्ड वॉइस में बोला था, उसकी कोई जरूरत नहीं है दादी, उन्हें सजा मिल चुकी है। फिलहाल सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट बात ये है कि वो लोग कोई सड़क छाप गुंडे मवाली नहीं थे। वो लोग शहर के फेमस बिजनेसमैनों में से एक थे। पर समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार उन्होंने झलक को ही अपना टारगेट क्यों चुना, ये बात हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैंने अपने आदमियों को लगा दिया है, बहुत जल्द उन लोगों की पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी। फिलहाल तो वो लोग अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। अब जैसे सिद्धार्थ ने बड़े ही नॉर्मल अंदाज में ये कहा, वहीं आकांक्षा की हड्डी में सिरहन दौड़ गई थी। उसे लगने लगा कि अगर वो गुंडे उसका नाम ले देते हैं तो उसकी तो पोल सबके सामने खुल जाएगी, और अगर ऐसा हुआ फिर क्या होगा? उसके गुस्से की, उसकी हैरानी की कोई सीमा नहीं थी। उसके चेहरे पर कुछ अलग ही तरह के एक्सप्रेशन बार बार आ रहे थे, लेकिन फिर भी वो लगातार झलक की सेफ्टी की चिंता करते हुए बोली, लेकिन झलक, तुम इस तरह से नाइट बार जाने की जरूरत क्या थी? कहीं वो दोनों क्लब में तुम्हारे साथ तो नहीं थे? क्योंकि किसी बिजनेसमैन ने इस तरह किसी लड़की को अगवा करने की कोशिश की हो, ऐसा तो कभी सुनने को नहीं मिला। अभी भी लगातार आकांक्षा झलक को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ रही थी, लेकिन झलक उसकी बात समझकर उसे घूरते हुए बोली, मेरी प्यारी बहन, मुझे लगता है कि तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी चिंता बिल्कुल भी मत करो। और वो कौन थे और मैंने उन्हें कितना अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश की है, ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि अभी उन लोगों की जान नहीं गई है, और जब तक वो जिंदा हैं और जब तक वो सच नहीं बताएंगे, हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। ये कहते हुए झलक पूरी तरह से आकांक्षा को जता रही थी। इसका मतलब साफ था कि वो इतना तो समझ चुकी थी, झलक पर हमला नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं होगा। वैसे भी झलक के साथ होने वाली चीजें नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं थीं। फिलहाल झलक रणविजय को देखते हुए बोली, रणविजय जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरी जान, मेरी इज्जत दोनों ही बचाई है। थैंक यू सो मच। और फिर दादी झलक को देखते हुए बोलती हैं, झलक बेटा, ये वक्त बात करने का नहीं है, आराम करने का है, अपनी हालत देखो। तब झलक आंखों ही आंखों में दादी का शुक्रिया अदा करती है और रणविजय को देखकर बोली, आई होप रणविजय जी, आपको बुरा नहीं लगेगा, मैं अभी कमरे में जा रही हूँ आराम करने के लिए। ये बोलकर उसने एक बार आकांक्षा की ओर देखा और सिद्धार्थ को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए सीधा अपने कमरे में चली गई। वहीं आकांक्षा का चेहरा तो पूरी तरह से पीला पड़ चुका था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि इस तरह से उसका प्लान पूरी तरह से सुपर फ्लॉप हो जाएगा। और ना केवल फ्लॉप हो जाएगा, बल्कि उसके भेजे हुए गुंडे भी पकड़े जाएंगे। और अगर उन्होंने सिद्धार्थ के टॉर्चर के आगे अफ्स का नाम ले दिया तो उसके साथ क्या करेगा? कहीं ना कहीं ये सब अब पूरी तरह से उसके दिमाग में चल रहा था। वहीं दादी अब जल्दी से सिद्धार्थ को देखकर बोली, सिद्धार्थ बेटा, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है? किसी ने अगर झलक को टारगेट करने की कोशिश की तो इसका मतलब साफ है कि वो जरूर जानता है कि झलक खुराना परिवार का हिस्सा है। और झलक खुराना परिवार का हिस्सा है, किसी का कोई हक नहीं होना चाहिए इस परिवार के मेंबर को तकलीफ देने का। अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करो, मैं अपनी बेटी के मामले में लापरवाही बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। फिलहाल देर ना करते हुए अब दादी तुरंत रणविजय को देखकर बोली, बेटा, सचमुच आज तुमने मेरी झलक को बचाकर ये बात साबित कर दी है कि तुम झलक के लिए बिल्कुल एकदम परफेक्ट हो। मैं उसके लिए ऐसे ही जीवन साथी ढूंढ रही थी जो उसे हर सिचुएशन से संभाल सके और उसका हर जगह ध्यान रख सके, और तुम बिल्कुल वैसे ही हो। रियली बेटा, थैंक यू, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब रणविजय तुरंत ही घुटनों के बाल दादी के पास जा बैठा था और बोला, अभी कैसे बातें कर रही हैं, और वैसे भी अगर झलक की जगह कोई और लड़की होती तो उसके लिए यही करता, सो प्लीज आप बिल्कुल भी परेशान मत हो दादी। ये बोलकर रणविजय ने अपने जेंटलमैन होने का सबूत दिया था। लेकिन तभी वो सिद्धार्थ को एक नज़र देखने के बाद दादी को देखकर बोला, दादी, अब आप मुझे प्लीज़ होटल में जाने की इजाज़त दीजिए, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ, तो मुझे अब रेस्ट की नीड है। रणविजय के होटल जाने की बात सुनकर दादी भड़कते हुए बोली,
ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? क्या तुमने अभी तक हमें माफ़ नहीं किया है, या तुम अभी तक हमें अपना नहीं समझते हो? तो इस तरह से तुम होटल जाने की बात कर रहे हो? तुम्हारा मेंशन है और तुम यहाँ पर जब तक दिल चाहे जब तक रह सकते हो, और वैसे भी हमने तुम्हें यहाँ अपने लिए बुलाया है, अपनी झलक के लिए बुलाया है, तो तुम इस तरह से किसी होटल में जाने की बात कैसे कर सकते हो बेटा? शायद तुम भूल रहे हो कि तुम भी खुराना परिवार का हिस्सा हो। ये बोलकर दादी ने पूरी तरह से रणविजय को डांट दिया था। वहीं सिद्धार्थ आंखें गड़ाए रणविजय को ही देख रहा था। उसके दिमाग में चल रहा था कि कहीं आखिर इसकी सोच कहां से कहां तक जा सकती है। तभी दादी बोली, फिलहाल होटल जाने की बात आइंदा अपने मुंह पर मत लाना, तुम्हें यहीं रहना होगा, ठीक है? ये बोलकर दादी उठी और बोली, तुम जाओ जाकर अपने कमरे में आराम करो, मैं तुम्हारा सामान सिद्धार्थ के बराबर वाले कमरे में लगवा दिया है, तो तुम जाओ जाकर आराम करो, तब तक मैं तुम लोगों के लिए खाना लगवा देती हूँ। ये बोलकर दादी चली गईं। दादी के उठकर जाने के बाद सिद्धार्थ अचानक उठा और सीधा उठकर उसने अपने सीधे हाथ से रणविजय का गला दबोच लिया।